बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानं कर्मसंगिनां जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन् ना बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानं कर्मसंगिनां जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानं कर्मसंगिनां जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। इसका अनुवाद साथ में पढ़ेंगे, बोलिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्त बनने के बाद में अन्य किसी वस्तु को समझने या जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भक्ति भाव से कर्म करते हुए सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आसक्त हैं अपने कर्मों के अंदर, कई प्रकार के कर्म हैं जिसमें वो आसक्त रहते हैं। तो उनके जो कर्म कांड के कार्य हैं उसमें वो आसक्त रहते हैं, तो उनको उन कार्यों से रोकना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी देवी देवता का उपासक है, तो अगर आप उसे रोक देंगे तो उसकी क्रमिक विकास रुक जाएगा। तो उसको कैसे क्रम में विकास कराना चाहिए, इसके बारे में भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि उसको धीरे धीरे कृष्ण भावना भवित में लगाना चाहिए। जैसे आपके परिवार के अगर सदस्य हैं या आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अभी कृष्ण भक्त नहीं बन पाए हैं या आपके परिवार के लोग नहीं बने, तो उनको डराना धमकाना नहीं चाहिए कि अरे कृष्ण भक्त नहीं बने हो नरक चले जाओगे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। प्रेम की वाणी से जब श्रील प्रभुपाद, आज बड़ा ही एक शुद्ध दिवस है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, भादो पूर्णिमा। भादो पूर्णिमा इसलिए बहुत ही मुख्य दिवस है, वैसे तो हर महीने पूर्णमासी आती है और लोग उसका व्रत आदि रखते हैं। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, शीतलता रहती है, तो पूर्णमासी का दिन बहुत ही ज्यादा पूजनीय दिन है, एकादशी और पूर्णिमा। परंतु भादो की पूर्णिमा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में भी हुआ है। आज के दिन भगवान कहते हैं जो श्रीमद् भागवत सुनता है, सुनाता है, बांटता है, श्रीमद् भागवत सुनता है, सुनाता है और बांटता है, उस व्यक्ति को भगवत धाम अवश्य प्राप्त। कितना विशेष दिन हो गया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उनका सन्यास का दिन है आज। आज श्रील प्रभुपाद जी ने मथुरा में जो जाकर केशव गौड़ीय मठ से सन्यास प्राप्त किया था, और आज ही के दिन चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, उन्होंने भी आज ही के दिन काशी में जाकर के सन्यास प्राप्त किया था। 16 वर्ष की उम्र थी उनकी, और उन्होंने श्रीपाद कृष्ण भारती महाराज से काशी में 1491 में जाकर के संन्यास प्राप्त किया। तो आज एक बहुत ही स्पेशल दिवस है। मैं सोच रहा था बहुत दिनों बाद यहाँ आने का मौका मिला, पर आए तो कौन से दिन आए, बड़े स्पेशल दिवस पे आए। आज के दिन जो भगवान की कथा बोलता है, सुनता है, बांटता है, वो सभी को भगवत धाम प्राप्त होता है। आज के दिन श्रीमद् भागवत जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को 7 दिन सुनाया गया, अगर वो कोई व्यक्ति आज थोड़ा सा भी श्रीमद् भागवत पाठ कर ले, श्रीमद् भागवत सुन ले, या श्रीमद् भागवत का आज ये प्रण ले ले कि मैं एक श्रीमद् भागवत जो पूरा सेट आता है उसका वितरण करूंगा, स्पॉन्सर करूंगा, तो वो व्यक्ति भगवत धाम अवश्य जाएगा। तो आज ही से पितृपक्ष भी प्रारंभ होते हैं 15 दिनों के लिए। ऊपर के जो लोक है, हमारे पृथ्वी लोक से ऊपर पितृलोक है, उस पितृलोक में पितृपक्ष के दिन में पितृलोक के लोगों को 15 दिन के लिए यहाँ भोजन के लिए भेजा जाता है। तो हमारे जो परिवार के लोग हैं वो द्वार खोल जाता है, और ऊपर के लोक में भगवान 10वें अध्याय में आपको वर्णन करेंगे, बताएंगे। भगवान कहते हैं कि सभी जो पितृ हैं उसमें मैं अयर नामा पितृ हूँ। अयर नामा पितरों का राजा है, जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, ऐसे अयर नामा रामक राजा जो है वो पितरों का राजा है उसका। जैसे भगवान विष्णु का विमान है गरुण, जिस प्रकार से इंद्र का विमान है ऐरावत, बलि महाराज का विमान है मतलब वाहन है क्या, उग्रश्रवा घोड़ा, जिस प्रकार से लक्ष्मी जी का वाहन है क्या, हाँ क्या है, उल्लू, हाँ वो तो आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मी जी के पीछे तो आप सब दीवाने रहते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, हाँ? दुर्गा जी का विमान क्या है, शेर, वाहन उनका शेर। इसी प्रकार से अयर नामा नामक जो पितरों के राजा है उनका वाहन है, विमान है कौआ, क्रो। इसीलिए पितृपक्ष में पहले जमाने में कौओं को खाना खिलाया जाता था, क्योंकि आयरनामा जो राजा है वो अपने विमान अपने वाहन कौए को कहते हैं कि जाओ अपनी प्रजाति को बोलो अपने अपने पितरों के लिए भोग लेकर आए, और नीचे जो उनके परिवार के लोग उनके लिए भोजन बनाते हैं वो ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से किसी कौए ने प्रसाद ले जाकर के आपके पितर को प्रदान कर दिया तो समझिए हो गया उसका वारा न्यारा, वो सौन पहुंच जाएगा सीधा कहां, गोलोक धाम। पितृलोक में मतलब आप समझ लीजिए रेड लाइट होती है नरक लोक, ग्रीन लाइट होती है स्वर्ग लोक, है ना, और येलो लाइट होती है पितृलोक। वेट करना पड़ता है, न स्वर्ग जाता है न नरक जाता है, वेट करना पड़ता है। तो क्यों वेट करना पड़ता है, अगर परिवार में सही प्रकार से संस्कार ना किए गए हो, अगर बच्चे भगवत गीता का पाठ ना करें, मरणोपरांत गरुण पाठ ना करें, 10 दिन की शुद्धि ना करें, 9 पिंडों का दान ना करें, बच्चों को मालूम ही ना हो करना क्या है, बेचारे क्या करें, साइंटिस्ट बन गए बेचारों को मालूम ही नहीं करना क्या है, वो तो पिपेट प्योरिटी करते रह गए पूरा जीवन, इंजेक्शन नहीं लगाते, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करें, उनके पितृ पितृलोक में जाके अटक गए, तो उनको वो लोग बोलते हैं कुंडली में पितृ दोष लग गया है। पितृ दोष क्या है, पितृ भूखे बैठे रहते हैं और कहते हैं अयरनामा राजा को कहते हैं हमें भूख लगी हमें खाना चाहिए, पितृ राजा अयरनामा कहता है मैं क्या करूं, तुम्हारे जो बच्चे हैं वंशज कुछ बनाते ही नहीं है, बनाते और खुद खाते हैं, ना भगवान को भोग लगाते हैं ना तुम्हारे लिए कुछ निकालते हैं। तो ये जो 15 दिन है इनके दिन स्पेशल पितृ पूजा का इसमें विधान है, पितृ पूजा करनी चाहिए, अपने पूर्वजों के निकालना चाहिए। तो एक बहुत ही अलग टॉपिक है, इस पे विशेष चर्चा कर सकते हैं अलग दिन, आज हम नहीं करेंगे। तो समझने की बात ये, कुछ लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे भोजन कैसे हवा में चला जाएगा, चंद्रमा सूरज से भी ऊपर एक लोक आप बता रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में पितृलोक, वहां कैसे चला जाएगा। तो जैसे आज आप एक मोबाइल में मैसेज डालते हैं और वो डिलीवर हो जाता है अमेरिका में, कैसे हो जाता है, आदमी कहता है वाया एयर मीडियम, हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन के द्वारा हमारा मैसेज ईमेल पहुंच जाता है, वैसे ही वायु जो दूत हैं जो दिखता नहीं है, वायु देव अग्नि देव, अग्नि के द्वारा वायु के द्वारा जल के माध्यम से ये सारी चीजें वहां पहुंच जाती हैं, जो कि सूक्ष्म, इसको सटल साइंस कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान। लेकिन ये सटल साइंस तब समझ में आएगा जब ग्रॉस साइंस समझ में आए, अभी तो हम बॉडी का विज्ञान ही नहीं समझ पाए। अगर पेट का दर्द हो और अगर किसी के पास चले जाओ जो पेट का विशेष मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ना हो, वो व्यक्ति ऑर्थोपेडिशियन हो या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट हो, उसके पास जाओ बोलो मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है, वो कहेगा जी जीआई का प्रॉब्लम हम नहीं देखते, ये वो देखते हैं। जो ग्रॉस को ही पूरा नहीं जान पाया एक व्यक्ति, वो सटल को कैसे जान पाएगा। इसीलिए सटल साइंस को बताने वाले जो है ना वो पूरे दुनिया को चलाने वाले होते हैं। इसीलिए आचार्य जन ये जो है ये विज्ञान एमबीबीएस एमडी एमएस से ऊपर का ज्ञान है, भगवत गीता और भागवत का ज्ञान। इसीलिए बड़े बड़े राजा आचार्यों से पूछ करके लड़ाई किया करते थे, क्योंकि उनके पास में ये ज्ञान था, ये ज्ञान सटल साइंस सोल का ज्ञान आत्मा का ज्ञान। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व को परिवर्तित कर पाए, सभी लोगों को इस ज्ञान को दे पाए, क्योंकि ये ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है, ये ज्ञान सरलता से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं। तो आज इस ज्ञान की बहुत ही कमी है हमारे संसार में। हम सबका कर्तव्य है कि आज इस भाद पूर्णिमा के दिन प्रण ले हम सब कि इस ज्ञान को मैक्सिमम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वितरित करेंगे। परंतु इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि आप जब इसको वितरित करने के लिए जाएं तो एक गलती ना करें, ना बुद्धि भेदम जानेत अज्ञानम। दूसरे व्यक्ति को अज्ञानी जो व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं है उसको डरा करके धमका करके नहीं ज्ञान देना है। इस ज्ञान को कैसे देना है, इस ज्ञान को भगवान कह रहे हैं विद्वान युक्त समाचरम। उसको विद्वान व्यक्ति के द्वारा उसको एंगेज करना है। एंगेज कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शिवजी का उपासक है और आप जानते हैं भगवान ने गीता में कहा कि शिवजी मेरे सबसे बड़े वैष्णव हैं। भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन किया गया, निम्न गणाम यथाम गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथाम शंभु पुराणानाम इदम तथा। निम्न गणाम, ऊपर से नीचे निम्न गणाम, गणाम मतलब आने वाली, तो ऊपर से नीचे क्या आता है, निम्न गणाम, ऊपर से नीचे क्या आता है, कौन बताएंगे, निम्न गणाम ऊपर से नीचे क्या आता है, क्या चीज है संसार में, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऊपर से नीचे आता है, पानी, पानी एक ऐसा पदार्थ है जो ऊपर से नीचे आता है, निम्न गणाम। इसीलिए नदियों का एक संस्कृत भाषा में नदी को जल प्रवाह को निम्न गणाम बोलते हैं, निम्न गणाम, ऊपर से नीचे बहने वाली, निम्न गणाम यथाम गंगा। जिस प्रकार से ऊपर से नीचे बहने वाले जलों में गंगा श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युतो तथा, जिस प्रकार से देवताओं में अच्युत, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण जिनको बोलते हैं इनफेलेबल लॉर्ड, जो कभी भी हारते नहीं है किसी भी परिस्थिति में, हमें हमेशा विजय प्राप्त होते हैं भगवान। महाभारत के युद्ध में भी भगवान जो है जिस प्रकार पांडवों के पास थे इसीलिए उनकी विजय हुई। तो भगवान कभी भी हारते नहीं है, कभी भी ट्राई करके देख लीजिए, जिस पक्ष में कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर मतिर ममा। भगवद गीता 18वां अध्याय 76वां श्लोक आखिरी श्लोक में संजय निर्णय देते हैं कि जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण के भक्त हैं, वहां लक्ष्मी जी भी होगी, वहां विजय भी होगी, ये बात दृढ़ निश्चय है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले हार जाते हैं, कैसे हार जाते हैं, भस्मासुर हार गया था, रावण शिव जी का उपासक था हार गया था, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का उपासक था हार गया था, ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के उपासक हैं जो हार जाते हैं, बाद में उनको देवी देवता मार डालते हैं। परंतु कृष्ण कैसे हैं, देवानाम अच्युत, अच्युत मतलब जो अपने मार्ग से अपने भक्तों को कभी च्युत नहीं होते, हराते नहीं, इनफेलिबल लॉर्ड, ऐसे भगवान। वैष्णव नाम यथाम शंभु, और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, शंभु, शिवजी वैष्णव है, भगवान नहीं है। और पुराणा नाम यदम तथा, पुराणों में भागवत पुराण जो आज भाद पूर्णिमा के दिन भगवान कह रहे हैं इसका वितरण करना चाहिए। तो ऐसी जो ये श्रीमद् भागवत वर्णन कर रहा है 12वां स्कंद कि भगवान कहते हैं वैष्णव है शिव जी और कृष्ण भगवान है भगवान। लेकिन अगर कोई शिव जी का उपासक है उसको जाकर के आप बोल दो कि तुम पागल हो, शिव के भजन में लगे हो, चलो चलो कृष्ण का भजन करो, तो ये एक प्रकार से इस श्लोक के विपरीत जाना हो गया। आपने क्या किया, आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोक दिया, यहाँ लिखा है रोको नहीं ताकि उसका मन विचलित ना हो, क्या करो अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कर्मों में लगाओ। उसको बोलो शिव जी की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है, शिव जी पे जल चढ़ाते वक्त है ना ओम नमः शिवाय तो बोलते हो, साथ में क्या बोला करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब आप ये वर्णन उनको करेंगे तो उनकी बात समझ में आएगी। आप देखिए श्रीमद् भागवतम के अंदर 12 स्कंद है और हर स्कंद श्रीमद् भागवत का भगवान के एक एक अंग का वर्णन करता है। पहला स्कंद भगवान के पैरों का, पहले दो स्कंद, तीसरा चौथा जांघों का वर्णन करता है। इस प्रकार से चलते चलते सारे 12 स्कंद भगवान के पूरे शरीर का वर्णन करते हैं। तो 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, 12वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है, ऐसे आता है, मतलब ये मस्तक आता है पूरा। तो आप सोचिए कि जो ये 12वां स्कंद है इसमें अंतिम कलयुग का वर्णन करा गया है उसके अंदर कि कलयुग कैसा होगा। कलयुग के आने वाले सिम्टम्स 5000 साल पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने बता दिए थे कि कैसे होंगे। कलयुग के अंदर लोग होंगे मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो ही उपाद्रतः। कैसे होंगे? मंद सुमंद मतियो, मति कैसी होगी? मंद नहीं होगी, सुमंद, बिल्कुल ही एकदम बंद, जिसे कहते हैं ना डब्बा गोल, बंद बुद्धि होगी व्यक्ति। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो, और जिस काम में हाथ डालेंगे वहां मंद भाग्य होगा। आदमी लगा रहे आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ, जो करता हूँ उसी में मेरे को सक्सेस नहीं मिलती है, आई शुड ट्राई समथिंग न्यू, मुझे कुछ और करना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार देखता हूँ बड़े बड़े डॉक्टर्स भी होते हैं वो डॉक्टर का काम छोड़ करके किसी और बिजनेस में चले जाते हैं। बोले क्यों? बोले जी उधर क्लिनिक में कोई आता ही नहीं था तो हमने सोचा ये कर ले, इधर भी कुछ सक्सेस नहीं मिली, इधर भी नहीं मिली। तो मंद भाग्य उपाद्रत, और उपद्रव मचेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे भाई भाई में। पहले तो दुश्मनी होती थी दूर दराज के असुरों और राक्षसों और देवताओं में, परंतु अभी तो भाई भाई में, और भाई भाई तो छोड़ो पति पत्नी में उपद्रव होते हैं, बाप बेटे में उपद्रव हो जाता है। सोच, ये कलयुग का सिम्टम है और ये बढ़ेगा आने वाले समय में, इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद गुरुजन कहते हैं जितनी जल्दी हो भगवान का नाम जपो और इस संसार से निकल लो। इस संसार में दोबारा अगर आ गए तो इससे भी अधिक कठिन परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, जब लोग मांसाहार का सेवन करेंगे, 10-10 साल के बच्चे गर्भवती बन जाए हो जाएंगी लड़कियां, है ना, 10 साल के बच्चे गर्भवती होंगे, सोच सकते हैं आप। और होने लगा है अभी जापान में, अगर आप जाके देखें 11-12 साल के बच्चे अबॉर्शन टैबलेट्स यूज करते हैं, सोच के। तो ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, ये कलयुग का सिम्टम है और ये बढ़ेगा। और ये कब लिख दिया गया था? 5000 साल। तो ये पूरे शास्त्र का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है भागवत सुनने के बाद मरने से? परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं, मुझको डर नहीं लग रहा है। कहा क्यों डर नहीं लग रहा? कहा डरता तो वो है जो पैदा होता है। कहा अच्छा, और इस बात को बोलकर के सुखदेव गोस्वामी उठे निर्लिप्त भाव से, वहां से प्रसंग समाप्त करके उठकर चले गए। और बैठे कौन है यहाँ पर? कोई नहीं बैठा। इसके बाद में पुराण के बारे में कुछ वर्णन ही नहीं किया कि भागवत पुराण क्या है, एंड में क्या फायदा है क्या नहीं है। तो यही सेम संवाद वहां बैठकर के उनके एक अग्रणी शिष्य थे सूत गोस्वामी, जो कि नैमिषारण्य में रहते थे, और वहां पर पुनः श्रीमद् भागवत को बोला गया। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को, जिसमें से सबसे अग्रणी इंपॉर्टेंट थे शौनक ऋषि, उनको ये प्रसंग श्रीमद् भागवत का फिर से सुनाया, है ना। तो जब दोबारा से पुनः इस भागवत प्रसंग को सुनाया गया, तब उन्होंने इस भागवत प्रसंग के अंतिम अध्यायों को समाप्त किया और उन्होंने कहा ये जो 13वां अध्याय जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि पुराणों में सबसे इंपॉर्टेंट, 4,00,000 श्लोक हैं पूरे पुराणों में, 18 पुराणों में 4,00,000 श्लोक हैं। कई लोग बोलते शिव पुराण में शिव जी बड़े, विष्णु पुराण में विष्णु बड़े, किसको माने? तो सुध गोस्वामी कहते हैं सारे पुराणों में से भागवत पुराण को मानो, क्योंकि सभी पुराण लिखने के बाद में नारद जी ने डांट लगाई वेद व्यास जी की, कहा इतने समझदार होकर की गलती कर दी तुमने, कर्म कांड लिख दिया तुमने अभी तक भक्ति के बारे में कुछ लिखा नहीं, चलो भक्ति के बारे में लिखो। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा और उसमें बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। और उन्होंने अंतिम शुद्ध गोस्वामी ने उपदेश दिया और कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पापा प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमनम, जिस जीवन में कभी दुख आ जाए, कभी जीवन में दुख समा जाए कि अरे मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरा तो मन ही नहीं लगता है, मैं बड़ा विचलित हो रहा हूँ, कैसे मेरा काम बनेगा, सुत गोस्वामी कहते हैं प्रणामो दुख शमनस्तम, सारे के सारे दुख को समाप्त करने की शक्ति किसमें है, नमामि हरिम परम, उस हरि को हम प्रणाम करते हैं जो सभी प्रकार के दुखों का शमन कर सकते हैं। कौन, कैसे, उन हरि का पूजा कैसे करें, नाम संकीर्तनम यस्य, उन हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से समाप्त कर सकता है क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति को इस चीज में लगाएंगे तो धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास होगा। क्या होगा, क्रमिक विकास। क्रमिक मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। कई लोग होते हैं जो कि ना पागलपन में पूछते हैं, एक आईएएस था व्यक्ति, उससे पूछा एक व्यक्ति ने, गांव में गया, बोला जी मैं आईएएस बन गया हूँ। आईएएस समझते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बोला मैं आईएएस बन गया हूँ। तो गांव के एक बाबा जी ने पूछा, बूढ़े बाबू जी ने कहा बेटा दसवीं पास भी कर लिया है, दसवीं पास भी कर लिया, तो क्या दसवीं पास कर लिया था कि नहीं किया था। दूसरा आया बोला कि अरे कैसी बातें करते हो, दसवीं तो कर लिया होगा, दसवीं तो कोई भी कर लेता है, ये पूछो बारहवीं किया है कि नहीं किया। तीसरा आया कहता है अरे बारहवीं तो आजकल हमारे गांव के बच्चे भी करने लगे हैं, दसवीं बारहवीं तो कोई भी कर लेता है, पूछो ग्रेजुएट हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ आईएएस हुआ कि नहीं हुआ, आईएएस के पास जो आईएएस है वो दसवीं है कि नहीं है, बोलिए है कि नहीं है, सब लोग बोलिए है कि नहीं है, बारहवीं है कि नहीं है, ग्रेजुएट है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण भक्त है तो वो उपासक है कि नहीं है, देवी देवताओं की पूजा करने वाला है कि नहीं है, माता पिता की सेवा करने वाला है कि नहीं है, सब कुछ करने वाला है। कोई ये नहीं कह सकता अरे कृष्ण भक्त ना ये नहीं करते, वो पागल है, वो ये बोलता है वो पागल है। भागवत कहती है अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त है तो वो आईएएस है, उसने दसवां भी किया है बारहवां भी किया, हो सकता है आज ना दिखे कि ऐसा करता है, अपने पूर्व जन्मों में वो करके आया है, इसलिए आज वो कृष्ण भक्ति के स्तर तक पहुंचा है। भगवान कहते हैं बहुनान जन्म जन्म नान्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं जो बहुत जन्मों के बाद जान पाते हैं वासुदेवम सर्वम इति, हर चीज वासुदेव है और कुछ नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, मेडिटेशन सेंटर, योगा, एवरीथिंग इंक्लूड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज फाइनल जजमेंट। पर ये समझ नहीं आता क्यों, बहुनान जन्म जन्मनांते, अभी आ जाएगा तो अगला जन्म कैसे होगा, अभी तो आपको जाना है, अभी तो नरक भी जाओगे, फिर अंगूठे में से नाखून खींचेंगे, फिर पितृलोक में भूखे तड़पेंगे, फिर आत्मा दोबारा गर्भ में आएगी, फिर पिताड़ित होना पड़ेगा, फिर दूसरा जन्म, फिर किसी स्कॉन सेंटर में जाएंगे, फिर किसी हरिनाम संस्था में जाएंगे, धीरे धीरे बहुनान जन्म जन्मनांते, बहुत जन्मों के बाद में वासुदेवम सर्वम, ये तब समझ में आता है। और किसी को अभी समझ में आ जाए अगर तो ही समझना चाहिए, बहुत बड़ी भगवान आपकी कृपा हो गई, बहुत जन्मों के प्रयास के बाद मैंने एक जन्म में गणेश की पूजा करी, एक जन्म में शिव की करी, एक में पार्वती की करी, एक में दुर्गा की करी, एक में वैष्णो देवी की चक्रे घाटे, एक में गोवर्धन परिक्रमाएं लगाई, अब मुझे बहुत जन्मों के बाद समझ में आ गया है क्या, वासुदेवम सर्वमिति, क्रमिक विकास है। इसलिए अगर कोई गलती से करता भी हो तो उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको समझाना चाहिए प्रेम से कि भैया हरि कृष्ण भजन करो और जो कर रहे हो सो करते रहो। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है कि जो काम करता है वो गलत करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको हरि भजन करना चाहिए। आप सब लोग जो यहाँ आ रहे हैं, पूरे दिल्ली में कितने करोड़ों की आबादी रहती है, उसमें से आप ही लोग क्यों ऐसे भाग्यशाली भगवान ने चुना जिनको गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है किसी भक्त के माध्यम के द्वारा। तो ये कोई ऐसे ही नहीं है। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, ऐसे कौन सा भाग्यशाली जीव है जिसको ऐसे ही गीता का प्रदान प्राप्त हो जाएगा। अरबों अरबों खरबों लोग खड़े थे महाभारत के युद्ध स्थल में, सबको क्यों नहीं गीता का ज्ञान प्रवेश कर गया? कान सबके थे, ठीक है ना, सबकी आंखें थी, लेकिन क्यों भगवान ने अर्जुन को चुना? भगवान कहते हैं अर्जुन मैंने तुमको इसलिए चुना क्योंकि तुम कौन हो? सखा चेती, तुम मेरे मित्र हो, प्रियो अस्मि, तुम मेरे प्रिय हो। तो भगवान ने अगर आपको चुना है तो आप कौन हो? भगवान के सखा चेती। कौन हो? भगवान के प्रियो अस्मि, भगवान के प्रिय हो। अब प्रिय बनने के बाद, सखा बनने के बाद अगर रिजेक्ट कर दोगे तो बताओ फिर छोड़ देगा भगवान? जाओ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जटरी जटरेश, बार बार जाओ माता की गर्भ में, डूबो इस गंदे संसार में, फिर वही द्वेष, फिर वही झगड़े, फिर वही चंटे। एक बार भीम ने मन में एक भाव आया, एक कथा सुना के समाप्त करूंगा आज के प्रसंग को, बड़ी रोचक कथा है, आपको सुनना चाहिए ध्यान से, अपने कान जो है वो इधर कथा की ओर कर लीजिए। भीम के मन में आया कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। हम सबके मन में एक ही तो प्रश्न रहता है, भगवान को कैसे प्रसन्न करें। कोई बोलता है कि एक काम करते केदारनाथ चढ़ते हैं, कोई बोलता है नहीं कांवड़ लेके चढ़ेंगे, कोई कहता है नहीं हम ना मृदंग बजाना सीख लेते हैं, कोई कहता है नहीं हम हारमोनियम बजाना सीख, ऐसे सब लोग अपना, कोई कहता है नहीं हम प्रसाद भंडारा देंगे, कोई कहता है नहीं हम झाड़ू लगाएंगे, सब अपने अपना प्रयास करते हैं। कोई कहता नहीं एक टांग पे खड़े रहो, कोई कहता नहीं एक जगह बैठ के 64 माला जप करो, कोई कहता नहीं गीता के सारे श्लोक याद कर लो, अलग अलग सबके भाव होते हैं। तो भीम के मन में आया, जब भी देखो पांडवों में से एक ही व्यक्ति की प्रशंसा होती है, किसकी? अर्जुन की प्रशंसा। भगवत गीता के ऊपर फोटो खींचेगा तो अर्जुन का खींचेगा, अरे हमने क्या पाप किया, हमारा भी खींचना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता था कि भगवान कृष्ण खड़े रहते और पांचों पांडवों का एक ग्रुप फोटो आ जाता, गदा लेके भीम खड़े हो जाते और नकुल सहदेव भाला लेके युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ के, लेकिन नहीं सिर्फ अर्जुन को ही चुना गया। तो कॉम्प्लेक्स आ गया भीम के मन में, भीम ने कहा मैं भी कुछ ऐसा सीखूंगा जिससे अर्जुन को हरा सकूं। अर्जुन के पास गांडीव है, मेरे पास गदा है, मैं सीखूंगा हारमोनियम मृदंग बजाना और भगवान द्वारका नाथ कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कीर्तनीय सदा हरि, जो कीर्तन करते हैं उससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, हरि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, उससे पाप भी प्रणाश हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न हो। लेकिन आता तो था नहीं, तो एक टीचर को बुला लिए, बोले कोई टीचर, टीचर आ गए हस्तिनापुर के अंदर, टीचर को बुला लिए और मेन राज्य के अंदर बैठकर राग अलापने लगे। लेकिन भीम के पास में शक्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं पहलवान जैसे, उनका राग तो आप समझ सकते हैं कैसा होता है, कैसा होता है राग, जैसे फटा बांस होता है ना वैसा, हमारे प्रभु जी की तरह बांसुरी तो नहीं बजा सकते सुंदर, लेकिन फटा बांस होता है ना। तो भीम प्रयास कर रहे थे लेकिन सुंदर सुर नहीं निकल रहा था, सा रहे तो इस प्रकार की आवाज से बड़े दुख हो रहा था सभी को। सबने कहा कौन मना करे इस भीम को, 10,000 हाथियों का बल भी है, कोई मना किया और उल्टा गदा उठा के मार दिया तो काम चौपट हो जाएगा भैया, कौन मना करे इस भीम को। तो नकुल सहदेव को कहा तुम जाओ, बोले हम तो छोटे हैं। अर्जुन को कहा, बोले अर्जुन बोला मेरे से तो कॉम्पिटिशन है सारा। तो युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर बोले मैं तो समाशील हूं, मैं तो किसी से द्वेष करता नहीं हूं, मैं तो बड़ा भाई हूं। कहा कौन जाएगा? द्रौपदी से कहा आप जाइए, आप पत्नी है, पत्नी के बस तो पूरा संसार हो जाता है। तो द्रौपदी गई, बोली देखिए ये रियास करना ना एकांतिक चीजें हैं, ये पब्लिकली नहीं करनी चाहिए राज्य में बैठ के, आप एकांत में चले जाइए और वहां बैठकर रियास करिए। तो हस्तिनापुर से चलकर के ये अरावली की पहाड़ियों में आकर वो करने लग गए, रियास करने लगे। तो सा अपना लगा रहे थे सरगम, तुरंत ही वहां पर उनका राज धोबी प्रकट होता है। राज धोबी को देख करके कहते हैं अरे तुम कैसे आए राज धोबी? कहा देखिए कारण मत पूछिए, मैं जैसे भी आया हूं, बड़ा भय लग रहा है कारण बताने में, कारण बताऊंगा तो मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। कहा नहीं नहीं बताओ बताओ डरो मत। कहा पहले आप वचन दीजिए मेरे को प्राण मतलब नहीं लेंगे मेरे। कहा नहीं नहीं बताओ बताओ। कहा देखिए 3 दिन से मेरा गधा गुम हो गया था, तो मैं ढूंढ रहा था गधा कहाँ है, पहाड़ों में गुम हो गया है, तो यहां से सुर आवाज आई तो मुझे लगा मेरा गधा बोल रहा है। तो मैं यहाँ चला आया, आपको ढूंढते ढूंढते तो पता चला यहाँ आप हैं, तो घबरा गया, परंतु आपने देख लिया और बुला लिया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, तो समझ गए। बोले कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ द्रौपदी ने मुझे हस्तिनापुर के राज्य से निकालकर यहाँ क्यों भेजा, मेरे आवाज में वो शक्ति नहीं है। जब भगवान ने नहीं दी तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, छोड़ दिया, घर वापिस चले गए। पहुंचे युधिष्ठिर ने कहा, अरे भीम सुबह से ढूंढ रहा हूँ, एक सेवा है। क्या सेवा है? का सेवा यह है कि द्वारका चले जाओ और द्वारका से द्वारकाधीश कृष्ण को बुला लाओ। कहा ठीक है भैया, सुबह चला जाऊंगा। तो जैसे सुबह उठे तो भीम को सबसे प्रिय क्या है, क्या है? भोजन। तो बोले सुबह सुबह पहले भोजन खा लूं भैया। ठीक है, भोजन खा लिया। भोजन खा के बोले थोड़ा तो सुस्ता लूं, विश्राम कर लूं। अब भीम भोजन खाते हैं तो 10,000 हाथियों के बराबर खाते हैं और फिर विश्राम करते हैं, सो गए। शाम को भैया देखे 3 बजे घूम रहे भीम। कहा भीम कृष्ण आ गए। कहा भैया गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं तो भूल ही गया, ये मोटी बुद्धि भूल ही गई, गदा चलाते चलाते खाते खाते कि कृष्ण को बुलाने जाना था। कहा बहुत गलती हो गई भैया, माफ कर दी, क्षमा कर दी। कहा कैसे हो तुम, ये फालतू टाइम पास करते हो मृदंगा लेकर हारमोनियम लेकर के, एक काम ढंग से नहीं होता है, लापरवाह कहीं के। बहुत दुख हुआ, उनके बाण ऐसे अंदर पूरा भेद रहे थे हृदय को। रोते रोते एक कमरा ले लिया, सामने तो नहीं रोए, कमरा बंद करके और फूट फूट के रोने लगे कि हे कृष्ण आप आ जाओ अब तो मेरी पुकार सुन के, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है। हस्तिनापुर से द्वारका जाने में गुजरात समय लगेगा, दिल्ली वाला द्वारका होता तो फिर भी जल्दी ले आते, लेकिन जाना था गुजरात। तो बोले हे कृष्ण क्या आप सिर्फ द्रौपदी की पुकार पे ही आते हो, क्योंकि द्रौपदी पुकारती है तो आप आ जाते हो साड़ी देने के लिए, वो बुलाती है दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने तो अन्न खाने आते हो, लेकिन क्या आप मेरी पुकार पे आओगे? हे कृष्ण मेरी पुकार भी सुन लो, मैं द्रौपदी की तरह कोमल नहीं हूँ, परंतु मैं आपको पुकार रहा हूँ, अपने दोनों हाथ ऊपर करके आपको पुकार रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो आंख खोल कर बोला मुझे पता है प्रभु, मेरी इस पुकार के अंदर वो प्रेम नहीं है जो अर्जुन के पास है, जो द्रौपदी के पास। और रो ही रहा था तब तक दरवाजे पे दस्तक हुआ, नॉक। तो बोला कौन? दरवाजा खोला तो सिपाही था, बोला आपको युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया। कहा आज तो पूरी वाट लगेगी, सुबह जो केस किया है मैंने गड़बड़, उसके लिए आज तो मेरे को क्या है, देश निकाला हो जाएगा, राज्य से बाहर निकाला जाऊंगा, खाना पीना बंद कर दिया जाएगा। पहले एकादशी का व्रत दे दिया गया है निर्जला, साल में एक बार का, लगता है 24 रखनी पड़ेंगी। बहुत घबराए हुए थे, पहुंचे तो देखा कृष्ण भगवान को चवर डुलाए जा रहे, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। अरे भीम आओ आओ। तो है ना युधिष्ठिर बोले, अरे भीम पहले तो तुम आलसी थे, अभी तो समझ में आया झूठ भी बोलते हो। कहा प्रभु झूठ? क्या झूठ बोला? कहा कृष्ण कह रहे हैं तुमने पुकारा तो चले आए, तो तुम तो कहते हो तुम बुलाने नहीं गए। तो भीम बोला सच बोल रहा हूँ भैया, आप तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मैंने बुलाया। कृष्ण बोले क्या तुमने नहीं बुलाया? कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया, मैं कब द्वारका आया? कृष्ण बोले मैंने नहीं कहा कि तुम द्वारका आए, लेकिन ये भी तो मैंने तुमने बुलाया कि नहीं बुलाया तो बताओ। तो भीम बोले कि हाँ बुलाया तो था मैंने, तो क्या मेरे बुलाने से आए हो? तो कृष्ण वहां पर एक बड़ा अच्छा, ये महाभारत का प्रसंग है और महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि देखो भीम अगर कोई मुझे सच में प्रसन्न करना चाहता है तो मुझे किसी का मृदंगा प्रसन्न नहीं कर सकता कि कीर्तन मेले में अरे क्या मृदंग बजाता है, वो प्रसन्न नहीं करता। किसी का हारमोनियम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, अरे वाह वाह क्या सुरताल लगाता है। अभी आपने देखा एक हारमोनियम बजाने वाले बड़े संगीतकार के साथ में क्या हुआ, आपने देखा है क्या क्या भजन गाते हैं, वो प्रसन्न नहीं करता, नकली है, पैसे कमाने के लिए दुनिया क्या क्या नहीं करती है। लेकिन भगवान ने कहा एक चीज मुझे प्रसन्न करती है भीम, जो तुमने दरवाजा बंद करके जो करुण पुकार लगाई है ना, मुझे अंदर से रोए हो, मेरे लिए जो रोता है ना भगवान के नाम में, वो मुझको प्रसन्न कर देता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमने इस्कॉन खोला है, इसको क्या कहा जाता है, क्राइंग स्कूल, जस्ट क्राई फॉर कृष्ण, हे कृष्ण कब आओगे मेरे जीवन में। और ये जब जप करो तो जप करते करते रोना चाहिए, ऐसे नहीं रोना चाहिए, नकली रोना चाहिए, ऐसे नहीं, नकली नहीं, एक असली करुण पुकार होनी चाहिए हृदय से कि कृष्ण मैं फंस गया हूं इस संसार में, कृपया कर मुझे निकाल लीजिए। अगर ऐसी करुण पुकार हम कर सकते हैं तो भगवान सबसे ज्यादा अधिक उसी से प्रसन्न होते हैं। और उस पुकार को करने के लिए ना तो आपको सरगम की आवश्यकता है, ना किसी डिग्री की आवश्यकता है, ना किसी अंग की आवश्यकता है। आप जैसे हैं उसी अवस्था में, जिस जाति के हैं, जिस शरीर के हैं, स्त्रीलिंग है पुरलिंग है, जिस भी जगह है, नीची जाति के ऊंची जाति के, जिस रंग के हैं, जिस संसार में, जिस काई पे भी हैं, आप पुकार सकते हैं भगवान को, भगवान अवश्य आएंगे। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद भगवान की, पंचतत्व गौरताय की, शील प्रभुपाद की, विश्वरूप महोत्सव की, शील प्रभुपाद सन्यास दिवस की, भाद पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रीमद भगवद गीता ग्रंथराज की, श्रीमद भागवतम महापुराण भगवान की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।